का था, रूह वही, रूप नया।
नमस्कार, आप सुन रहे हैं सआदत हसन मंटो की लिखी ठंडा गोश्त। ईश्वर सिंह जो ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कुलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूर कर देखा और दरवाजे की चटकनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का वातावरण एक अजीब रहस्यमयी खामोशी में गर्क था। कुलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। ईश्वर सिंह जो शायद अपने समस्यापूर्ण विचारों के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में किरपाण लेकर उस कोने में खड़ा था। कुछ क्षण इसी तरह खामोशी में बीत गए। कुलवंत कौर को थोड़ा देर के बाद अपना आसन पसंद आया और दोनों टांगे पलंग के बीच लटकाकर उन्हें हिलाने लगी। ईश्वर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कुलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी, चौड़े चकले कूले थुल थुल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही ज्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, ऊपरी होंठ पर सुरमई गुबार। ठोड़ी की बनावट से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईश्वर सिंह सिर नीचा किए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सिर पर उसके कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसने हाथ में जो किरपाण थामी हुई थी उसमें थोड़ी थोड़ी कंपन थी। उसके आकार प्रकार और डील डॉल से पता चलता था कि वह कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए सबसे उपयुक्त मर्द है। कुछ क्षण जब इसी तरह खामोशी से बीत गए तो कुलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आंखों को नचाकर वह सिर्फ इस कदर कह सकी, ईश्वर सिंह, ओ ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब न लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चिल्लाए, ईश्वर सिंह, लेकिन फौरन ही आवाज भींच ली। पलंग पर से उठकर उसकी तरफ होती हुई बोली,
कहां गायब रहे तुम इतने दिन?
ईश्वर सिंह ने खुश होंठों पर जबान फेरी,
मुझे मालूम नहीं।
कुलवंत कौर भन्ना गए,
ये भी कोई माइया जवाब है?
ईश्वर सिंह ने किरपाण एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था वो कई दिनों का बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा जो अब ईश्वर सिंह से लबालब भरा था, और उसके दिल में हमदर्दी की भावना पैदा हो गई। चुनाचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी क्या हुआ तुम्हें? ईश्वर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कुलवंत कौर के परिचित चेहरे को टटोलना शुरू किया, कुलवंत। आवाज में दर्द था। कुलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर अपने ऊपर होंठ में आ गई। हां जानी, कहकर वो उसको दांतों से काटने लगी। ईश्वर सिंह ने पगड़ी उतार दी, कुलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा, उसके गोश्त भरे कूल्हे पर जोर से थप्पा मारा और सिर को झटका देकर अपने आप से कहा, इस कुड़ी का दिमाग ही खराब है। झटके देने से उसके केश खुल गए। कुलवंत उंगलियों से उनमें कंघी करने लगे। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईश्वर सिंह, कहां रहे तुम इतने दिन?
पूरे की मां के घर।
ईश्वर सिंह ने कुलवंत कौर को घूर कर देखा और फौरन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा।
कसम वाहे गुरु की, बड़ी जानदार औरत हो।
कुलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईश्वर सिंह के हाथ एक तरफ छटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम, बताओ कहां थे? शहर गए थे? ईश्वर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई,
नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तुमख ना हो जो तुमसे झूठ बोले।
कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी,
लेकिन मेरी समझ में नहीं आता उस रात तुम्हें हुआ क्या? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे, मुझे तुमने वे तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे, मेरी पप्पियां ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए।
ईश्वर सिंह का रंग जर्द हो गया।
कुलवंत ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग पीला पड़ गया ईश्वर सिंह, कसम वाहेगुरु की, जरूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान कसम कुछ भी नहीं।
ईश्वर सिंह की आवाज बेजान थी। कुलवंता कौर का शुभा और ज्यादा मजबूत हो गया। ऊपरी होंठ भींचकर उसमें एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा,
ईश्वर सिंह क्या बात है, तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज पहले थे।
ईश्वर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कुलवंत कौर को अपने मजबूत बाजों से समेट कर उसने पूरी ताकत के साथ झझोड़ना शुरू किया,
जानी मैं वही हूं, घुट घुट कर पा जफ्फियां, तेरी निकले हड्डी दी गर्मी।
कुलवंत कौर ने कोई बाधा न दी, लेकिन वो शिकायत करती रही,
तुम्हें उस रात हो क्या गया था?
बुरे की मां का वो हो गया था।
बताओगे नहीं?
कोई बात हो तो बताऊं।
मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ।
ईश्वर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होंठ पर गड़ा दिए। मूंछों के बाल कुलवंत कौर के नथुने में घुसे तो उसे छींक आ गई। ईश्वर सिंह ने अपनी सर्दी उतार दी और कुलवंत कौर को वासनामयी नजरों से देखकर कहा,
आओ जानी एक बाजी ताश की हो जाए।
कुलवंत कौर के ऊपरी होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आईं। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा,
चल
दफाओ। ईश्वर सिंह ने उसके भरे हुए कूले पर जोर से चुटकी भरी। कुलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई।
न कर ईश्वर सिंह, मेरे दर्द होता है।
ईश्वर सिंह ने आगे बढ़कर कुलवंत कौर की ऊपरी होंठ अपने दांतों तले दबा लिया और कचकचाने लगा। कुलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईश्वर सिंह ने अपना कुर्ता उतार कर फेंक दिया और कहा,
तो फिर हो जाए तुरप चाल।
कुलवंत कौर का ऊपरी होंठ कंपकंपाने लगा। ईश्वर सिंह ने दोनों हाथों से कुलवंत कौर की कमीज का पेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं उसी तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूमकर उसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा,
कुलवंत कसम वाहेगुरु की, बड़ी करारी औरत हो तुम।
कुलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए धब्बों को देखने लगी।
बड़ा जालिम है तू ईश्वर सिंह।
ईश्वर सिंह अपनी घनी काली मूछों में मुस्कुराया,
होने दे आज जालिम।
और यह कहकर उसने और जुल्म ढाने शुरू किए। कुलवंत कौर का ऊपरी होंठ दांत तले किचकिचाया, कान की लवों को काटा, उभरे हुए सीनों को बंबोड़ा, भरे हुए कूनों पर आवाज पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर कर बोसे लिए, चूस चूस कर उसका सीना धूकों से तथेड़ दिया। कुलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी, लेकिन ईश्वर सिंह उन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरकत पैदा न कर सका। जितने गुर और जितने दांव उसे याद थे सबके सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, परंतु कोई कारगर न हुआ। कुलवंत कौर के सारे बदन के तार तनकर खुद ब खुद बज रहे थे। गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा,
ईश्वर सिंह काफी फेंट चुके हैं, अब पत्ता फेंक।
ये सुनते ही ईश्वर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हांफता हुआ वो कुलवंत के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा था, लेकिन जब कुलवंत कौर के क्रियापेक्षी अंगों को सख्त निराशा हुई तो वो झल्लाकर पलंग से उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसे उतारकर उसने जल्दी जल्दी ओढ़कर और नथुने फुलाकर बिफरे हुए लहजे में कहा,
ईश्वर सिंह वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रहकर आया है और जिसने तुझे निचोड़ डाला है।
कुलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी,
मैं पूछती हूं कौन है वो चट्टो, है वो उल्फती, कौन है वो चोर पत्ता?
ईश्वर सिंह ने थके हुए लहजे में कहा,
कोई भी नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं।
कुलवंत कौर ने अपने उभरे हुए कूलों पर हाथ रखकर एक दृढ़ता के साथ कहा,
ईश्वर सिंह मैं आज झूठ सच जान कर रहूंगी, खा वाहेगुरु की कसम इसकी तह में कोई औरत नहीं।
ईश्वर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कुलवंत कौर ने इसकी इजाजत न दी।
कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं भी सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ, तक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले अब खा वाहेगुरु की कसम, इसकी तह में कोई औरत नहीं।
ईशा सिंह ने बड़े दुख के साथ हाँ में सर हिलाया। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई, लपक कर कोने में से कृपाण उठाई, म्यान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईश्वर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फव्वारे छूट पड़े। कुलवंत कौर को इससे भी तसल्ली न हुई तो उसने वहशी बिल्लियों की तरह ईश्वर सिंह के केश नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सौत को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईशा सिंह ने थोड़ी देर बाद दुबली आवाज में विनती की, जाने दे अब कुलवंत, जाने दे। आवाज में बला का दर्द था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईश्वर सिंह के गले में उड़ उड़ कर उसकी मूछों पर गिर रहा था। उसने अपने कांपते होंठ खोले और कुलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और शिकायतों की मिली जुली निगाहों से देखा।
मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी करी, लेकिन जो हुआ ठीक हुआ।
कुलवंत कौर की ईशा फिर भड़ गई।
मगर वो है कौन, तेरी माँ?
लहू ईश्वर सिंह की जबान तक पहुंच गया। जब उसने उसका स्वाद चखा तो उसके बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई।
और मैं भेनी या छह आदमियों को कत्ल कर चुका हूं इसी कृपाण से।
कुलवंत कौर के दिमाग में दूसरी औरत थी।
मैं पूछती हूं, कौन है वो हरामजादी?
ईश्वर सिंह की आंखें धुंधला रही थी। एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई और उसने कुलवंत कौर से कहा,
काली न दे उस भड़वी को।
कुलवंत कौर चिल्लाई, मैं पूछती हूं वो कौन?
ईश्वर सिंह के गले में आवाज रुंध गई।
बताता हूं,
कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपना जीता जागता खून देखकर मुस्कुराया।
इंसान माइयां भी एक अजीब चीज है।
कुलवंत कौर उसके जवाब का इंतजार कर रही थी।
ईश्वर सिंह, तू मतलब की बात कर।
ईश्वर सिंह की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूछों में और ज्यादा फैल गई।
मतलब ही की बात कर रहा हूं, गला चिरा हुआ है माइया मेरा, अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊंगा।
और जब वो बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे।
कुलवंत, मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कुड़ियां भी एक अजीब चीज है। शहर में लूट मची थी तो सबकी तरह मैंने भी इसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे मैंने तुम्हें दे दिए, लेकिन एक बात तुम्हें न बताई।
ईश्वर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और करहाने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो न दी और बड़ी बेरहमी से पूछा,
कौन सी बात?
ईश्वर सिंह ने मूछों पर जमे हुए जरिए उड़ाते हुए कहा,
जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें सात आदमी थे, छह मैंने कत्ल कर दिए इसी कृपाण से, जिससे तूने मुझे छोड़ से। सुन, एक लड़की थी बहुत ही सुंदर, उसको उठाकर मैं अपने साथ ले आया।
कुलवंत कौर खामोश सुनती रही। ईश्वर सिंह ने एक बार फिर फूंक मारकर मूछों पर से लहू उड़ाया।
कुलवंती जानी, मैं तुमसे क्या कहूं, कितनी सुंदर थी, मैं उसे भी मार डालता, पर मैंने कहा नहीं ईश्वर सिंह, कुलवंत कौर दे, हर रोज मजे लेता है, ये मेवा भी चक्कर दे।
कुलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा,
और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया। तो रास्ते में क्या कह रहा था मैं, हाँ, रास्ते में नहर की पटरी के पास थुअड़ की झाड़ियां तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा कि फेटू, फिर ख्याल आया कि नहीं।
ये कहते कहते ईश्वर सिंह की जबान सूख गई। कुलवंत ने थूक निकालकर हलक तक किया और पूछा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह के हलक से मुश्किल से ये शब्द निकले,
मैंने पत्ता फेंका, लेकिन
उसकी आवाज डूब गई। कुलवंत कौर ने उसे झंझोड़ा,
फिर क्या हुआ?
ईश्वर सिंह ने अपनी बंद होती आंखें खोली और कुलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थिरक रही थी।
वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे मुझे अपना हाथ दे।
कुलवंत कौर ने अपना हाथ
ईश्वर सिंह के हाथ पर रखा जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था।